ओम शांति। जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल जल दे वही है, जब राहे हो सब उलझी और दिशा दिखाए वही है, जब भीतर हो बस तन्हाई और साथ निभाए वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। तो जब सब कुछ डेजर्ट जैसा दिखे, तब शीतल जल वो देता है। When the roads are confusing, दिशा वो दिखाता है, और जब लोनलीनेस का अनुभव, तन्हाई, तब वो साथ निभाता है। जब अंधेरे में कुछ ना दिखे और चांद सा चमके वही है, जब खो गया हो किनारा और गोदी में ले वही है, जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। जब भूल से डगमग पाव हो और कोई थामे वही है, जब आंखें हो जाए नम सी और प्यार से पोछे वही है, जब मन भी हो भारी और हल्का करे वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, गीत गाएंगे विष्णुप्रिया बहन जी, और हम बाबा की याद में खो जाएंगे।
नैनों के झरोखे जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल जल दे वही है, जब राहें हो सब उलझी हर दिशा दिखाए वही है, जब भीतर हो बस तन्हाई और साथ निभाए वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। जब अंधेरे में कुछ न दिखे हर चांद से चमके वही है, जब खो गया हो किनारा हर गोदी में ले वही है, जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है, जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है।
ओम शांति। चीन के दार्शनिक चिंग चैंग ने अपने जीवन कहानी में एक घटना का वर्णन लिखा है। उसने लिखा है कि मुझे खोज थी सौंदर्य की, ब्यूटी की, उसका रस था सौंदर्य शास्त्र में एस्थेटिक्स और सौंदर्य के विषय में जो कुछ भी लिखा गया है, सारे विश्व में सारे ग्रंथ शास्त्र किताबें, उसमें चिंग चांग की लिखी हुई किताबें ऑन ब्यूटी बड़ी प्रसिद्ध है। उसने लिखा कि 20 साल मैं खोज में था, ब्यूटी की परिभाषा क्या है, सौंदर्य की परिभाषा क्या है, मैं खोज रहा था, किताबें पढ़ रहा था, अपने कमरे में बंद था, और एक रात जब मैं किताबें पढ़ रहा था और जो अगरबत्ती थी वो बुझ गई, कई वर्षों से मैं बाहर नहीं निकला था, और फिर जब कमरे में अंधेरा हो गया तो मैंने पर्दा हटाया और बाहर नजर गई। बाहर चांदनी रात थी और देखा पेड़ खड़े हैं जैसे ध्यान मग्न ऋषि हो, और देखा मंद मंद पवन चल रही है, और देखा फूलों की सुगंध, और अचानक मैंने पर्दा पूरा हटाया और बाहर जाकर देखा, और अचानक एक पक्षी की आवाज़ मुझे सुनाई दी, उस पक्षी का गीत सुनाई दिया, और उस गीत के साथ ही फूलों की सुगंध मेरे नासिका में घुस गई, और तब मैं चिल्लाया, What a illusion I was living in, मैं कैसे भ्रम में जी रहा था, जबकि सौंदर्य सामने है और सौंदर्य प्रत्यक्ष है और आंखों के समीप है, और मैं उसे किताबों में ढूंढ रहा था और बंद कमरों में ढूंढ रहा था। The beauty is here and the beauty is now, और मैं देख ही नहीं पाया, बाहर ही नहीं निकला कभी, बस किताबें ही पढ़ता रहा और ढूंढता रहा परिभाषा, डेफिनेशंस, जबकि सौंदर्य तो सामने खड़ा है, इन ऑल इट्स नेकेडनेस, इन ऑल इट्स एंटायरिटी। और तब मेरे जीवन में एक नया अध्याय चालू हुआ। चाइनीज फिलोसोफर चिंग चैंग ने अपनी आत्मकथा में ऐसा लिखा है, चारों तरफ सौंदर्य है, चारों तरफ जीवन है, चारों तरफ संगीत है, चारों तरफ गीत है, चारों तरफ जीवन की धड़कन है, और हम अपने विचारों में और अपने दुखों में और अपने ही अतीत में या तो भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं और इस पल को खो देते हैं। तो साधना का आज का दूसरा दिन, स्वयं से बात करने का दिन, मौन का दिन, अंतर्मुक्ता का दिन, मूवी से टॉकी और टॉकी से मूवी, टॉकी से साइलेंस में जाने का दिन, डिजिटल डिटॉक्स का दिन, इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन का दिन, लिविंग इन दिस मोमेंट का दिन, प्रकृति से फिर से जुड़ने का दिन, स्वयं को देखने का दिन, अपने मन को अपनी बुद्धि को स्वच्छ करने का दिन, अपने संस्कारों को परिष्कृत करने का दिन, और फिर से उस परम की ओर मन लगाने का दिन। जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल जल दे वही है, जब राहे हो उलझी और दिशा दिखाए वही है, जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब एक मार्ग हमेशा खुला रहता है, उस परमात्मा से, उस शिव पिता से फिर से कनेक्ट होने का दिन। हाउ टू फॉल इन लव विद गॉड अगेन, इस विषय में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जैसे कल कहा, अपनी डायरी खोलनी है, टॉपिक लिखना है, टाइम लिखना है, डेट लिखना है, किस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान वहाँ लिखना है, ऑडिटोरियम, एवरीथिंग, सो दैट माइंड इज प्रिपेयर्ड। समराइज करना है चीज़ों को, अपनी डायरी को नीट रखना है, जो हम लिखते हैं वो लिखत सुंदर हो, स्वच्छ हो, अट्रैक्टिव हो, ताकि हमें ही उसे फिर फिर पढ़ने की इच्छा हो, देखने की इच्छा हो, हाथ लगाने की इच्छा हो। सुबह की साकार मुरली, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उन्हें पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, आपस में पढ़ाई की वार्तालाप करते हैं, एकांत में जाते हैं, मंथन करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी, स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड। ।1942 में एक किताब लिखी गई थी जो हमने बचपन में पढ़ी थी जब बहुत छोटे थे, 7th में, जो अब तक याद रहती है, द फैमिली दैट ओ टू क्राइस्ट, एक ऐसा परिवार जो जीसस क्राइस्ट से भी आगे चला गया। सेंट क्लेयर वॉक्स बर्नार्ड के जीवन पर आधारित वो किताब है। उस किताब में एक परिवार है जिसमें 5-7 बच्चे हैं, लड़के, जो सबसे पहला होता है वो चर्च में समर्पित हो जाता है। वो कहता है, ये संसार मेरे लिए नहीं है, मेरा मार्ग ईश्वर की तरफ जाने वाला है। दूसरा भी वही करता है, और तीसरा तो मुख्य, जिसकी श्रेणी संतों की श्रेणी में गिनी जाती है, सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेयर वॉक्स। वो किताब सेंट बर्नार्ड के ऊपर है, उसके जीवन के ऊपर है। वो अपने आप को ऐसे बताता है जैसे मैं क्राइस्ट की ब्राइड हूं, क्राइस्ट इज ब्राइड ग्रूम। उस किताब में पहला भाई चर्च में चला जाता है, दूसरा चला जाता है, तीसरा चला जाता है, चौथा भी चला जाता है, पांचवा भी और छठवा भी, एक को देखकर एक, सभी लोग परमात्मा मार्ग पर चले जाते हैं। घर बड़ा है, खेती है, वो सोचते हैं जो छोटा वाला भाई है इसको सब सौंप देंगे, ये देख लेगा ये लौकिक सारा, और हम लोग ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय कार्य अर्थ निकल पड़ेंगे। वो जो छोटा होता है जेरेंड, वो अपने भाइयों को देखता है, ये 6 के 6 चले गए और मुझे ये घर परिवार पैसा संपत्ति संसार दे के जा रहे हैं। वो कहता है, यू टुक द हेवन एंड गिव मी द लैंड, आई एम ऑल्सो कमिंग। वो कहता है, तुमने स्वर्ग ले लिया और मुझे धरती देते हो, मैं भी आ रहा हूं। वो सातों के सातों भाई अध्यात्म के मार्ग पर निकल पड़ते। किताब का नाम है ऐसा परिवार जो क्राइस्ट से भी आगे चला गया। एक एक का समर्पण एक दो से ज्यादा। ऐसा क्या था इन आत्माओं में भक्ति मार्ग में कि द्वापर से हम देखते हैं आत्माओं ने अपने सर्वस्व को उस ईश्वर के प्रति अर्पित कर दिया। आत्मा का मूलभूत स्वभाव ही प्रभु प्रेम है। बिना इस प्रेम के आत्मा अपूर्ण है और भक्ति मार्ग की द्वापर से अब तक की सारी वो आत्माएं जिन्होंने भगवान को ढूंढा, अनन्य भक्ति की खोज की, वो सारी कहीं ना कहीं इसी ब्राह्मण परिवार में है। इस संसार में जो जो आत्माओं ने, जिस जिस आत्मा ने भगवान से प्यार किया, एक अनन्य प्रेम, दूसरी वो सारी आत्माएं जिन्होंने इस देश से प्यार किया, वो सारे फ्रीडम फाइटर्स चाणक्य से लेके तो सुखदेव राजगुरु भगत सिंह से लेकर तो झांसी की रानी से तात्या टोपे से लेकर तो मंगल पांडे से लेकर वो सारे इस देश के प्रति इतना प्रेम कैसे? क्यों उस चाणक्य ने अखंड भारत का स्वप्न देखा था? जरूर ये सारी आत्माएं देव कुल की ही आत्माएं होगी जिन्होंने कभी स्वर्ग देखा था, सतयुग देखा था, जिन्होंने अखंड भारत देखा था। और जैसे ही द्वापर चालू हुआ, इन सभी आत्माओं के जीवन में वो प्रभु प्रेम या देश प्रेम या धर्म के प्रति प्रेम या सत्य के प्रति प्रेम दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं यहीं पर सब बैठे। परमात्मा प्रेम बार बार मन उसको याद करे, बार बार उसकी ओर जाए। उससे क्या होगा वो हमें पता नहीं, पर भगवान स्वयं कहता है बाप को याद करो सुबह की साकार मुरली। रोमांच खड़े हो जाने चाहिए तुम्हारे, खुशी में उछल आनी चाहिए। उसे एक की याद में मन मना भव। गीता में ये मन मना भाव एकमात्र श्लोक है जो दो बार रिपीट हुआ है। मन मना भव मध्याची भक्तो माम नमस्करु मामे वैश्यसी, यहां तक दोनों श्लोक सेम है। उसकी आगे की थोड़ी लाइन में डिफरेंस है, 9.34 एंड 18.65। नौवा अध्याय 34th श्लोक और 18वां अध्याय 65th श्लोक दोनों में सेम लाइन है, लास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है बस। मन मना भव मद भक्त्या मध्याची माम नमस्करु, अपने मन को मुझ में लगा, मेरी शरण में आ, मुझे नमस्कार कर। मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, मैं तुम्हें वादा करता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, ये मेरा वचन है, तुम मेरे धाम में आओगे। लास्ट में वायदा है और 9th अध्याय में वो मेरे परायण हो जाएगा, मत परायण हो। दो दिन पहले मुरली में आया था, सबसे अच्छा रत्न है डैश, कौन सा? सबसे अच्छा रत्न है मन मना भव। इस मन को मुझ में लगा, ये भगवान ने कहा है। क्यों लगा, क्या लगा, ये शायद हमें समझ नहीं आया ना आए, परंतु जो गुरु कहता है अगर शिष्य वो सब कुछ करता जाए करता जाए करता जाए तो अपने आप जीवन में क्रांति आएगी अपने आप, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, पर उसने सब देखा है, उसे पता है। 2010 में एक किताब पर मूवी बनी थी कराटे किड्स, उसमें एक छोटा सा बच्चा है शाउड्रे, उसको उसके साथ ही चिढ़ाते हैं, वो पतला दुबला है, उसे कराटे सीखना है, कुंफू। वो अपने गुरु के पास जाता है, अपने गुरु से कहता है कि मुझे कराटे सीखने। गुरु कहता है अच्छा ठीक है, सिखाता हूँ, अपना शर्ट निकालो। बोलता है ये मैं क्या करूँ। बोलता है शर्ट निकालो, अब क्या करना है, ऊपर खूंटी पर लटकाओ। तो अब वापस लो, अब नीचे गिराओ, फिर उठाओ, फिर पहनो। बोलता है ना, तो फिर खूंटी पर लटकाओ, अब फिर नीचे गिराओ, अब उठाओ, फिर पहनो, अब फिर से निकालो। बोलते ये क्या चल रहा है। वो कुंफू मास्टर कई महीनों तक वही उसको कराता है। उस बच्चे को समझ नहीं आता है, वो बच्चा कहता है अब मुझे समझ में आया क्यों लोग तुम्हारे पास नहीं आते, तुमको आता ही नहीं कुछ। आज मुझे समझ में आया कि तुम्हारा केवल मैं अकेला ही शिष्य क्यों हूं। लोग सही कहते हैं तुम पागल हो। उस बच्चे को पता नहीं वो किस मास्टर के पास आया और मास्टर उसे किस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है। वो चिल्लाते रहता है पर मास्टर का कहना है यही करो, चुपचाप करते रहो, बारिश हो रही है करते रहो, धूप हो रही है करते रहो, महीने महीने यही करते रहो। और उसे और ट्रेनिंग देता है, एटीट्यूड, कुछ भी हो जाए मुंह नहीं बनाने का, मुंह हंसता हुआ करने का। और मास्टर उसे सिखाता है ई ऐसे करो। वो वीडियो अभी हम देखेंगे यहां पर, वो वीडियो प्ले करेंगे। बहुत सुंदर ये वीडियो है शाओ ड्रे और उसके मास्टर का ऑन कुंफू। कुंफू क्या है, केवल कराटे नहीं कुछ और भी है।
फिर अभी क्या क्या
So basically, this time, what I'm trying to say is, I got a good foundation here. You know, like I said, I'm just... Might not be as hard to teach me as other people, you know?
Hand it up.
Okay. All right, but now...
Take it down. Put it on. Take it off.
I already did
Take
all this.
Take it off.
Can you just tell me why I'm
Take
doing this?
Take it off. Hand it up. Take it down. Put it on the ground. Pick it up. Hang up. Take it down. Put it on. Take it off. Put it on the ground. Pick it up. Hang it up. Take it down. Put it on. Take it off. May I come in? Where's your jacket?
I thought I was warm enough without it.
Go get it.
Can we go all the way back just to get it?
Yes, all the way back where you hide it. It's not right.
What? I'm doing it.
No. Something's missing.
Nothing's missing.
Ah. You forgot this. Attitude. Check it off. Attitude. Yes, that's it.
Okay, Ms. Han, I get it. I'm sorry. I shouldn't have treated my mom like that. You were right.
Check it on. Check it on.
I don't have a jacket.
Check it on. Remember, always strong. Check it off. Strong. Left foot back. Right foot back. Left foot back.
Take off your jacket.
Focus. Always concentrate.
Left back. Right foot back. Take off your jacket. Stay.
Stop. Hang it up.
Hang it up. Hang it up. Attitude. Strike. Hang up and attitude. Harder. Harder.
Good. But no face. Lives in everything we do, Xiao Zui. He lives in how we put on the jacket, how we take off the jacket. And lives in how we treat people. Everything is Kung Fu.
Kung Fu lives in everything, Xiao Dre. It lives in how we put out the jacket, how we put on the jacket. It lives in how we treat the people. It lives in everything. Ye guru ko pata hai, उस शिष्य को नहीं पता, वो शिष्य समझता है ये हम क्या कर रहे हैं, ये पागलपन है, जैकेट उतारो, जैकेट निकालो, जैकेट नीचे पटको फिर पहनो। पर उस सद्गुरु को पता है वो जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, इसलिए हमारा दृष्टिकोण बहुत सीमित है और भगवान का दृष्टिकोण बहुत बड़ा, इसलिए उसने कही हुई हर बात फॉलो। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी का नियम होता है पूछो मत क्या क्यों कैसे कब कहां, बस करो और मरो। हम हैं रूहानी मिलिट्री, हम हैं रूहानी आर्मी, और भगवान है इस रूहानी सेना का कमांडर। ये उसके महावाक्य है, ये वो कह रहा है। उस बच्चे को नहीं पता चल रहा है और उसके मास्टर को पता है कराटे कैसे सिखाया जाता है। मार्शल आर्ट्स शायद विश्व भर में पहली ऐसी आर्ट है जिसमें मेडिटेशन कंबाइंड हुआ है, बाकी सभी योग ध्यान मग्न बैठते, परंतु इस देश के लोग भी अद्भुत होंगे जहां ने डांस को मेडिटेशन बना दिया, चाय पीने को मेडिटेशन बना दिया, मार्शल आर्ट्स को मेडिटेशन बना दिया। कुंग फू इज इन एवरीथिंग शाउड्रे, इट इज मेडिटेशन, एवरी स्ट्रोक इज मेडिटेशन, एवरी एक्ट इज मेडिटेशन, एवरी मूवमेंट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई एक आइसोलेटेड चीज नहीं है जो हम एक कमरे में बैठे हैं और वहां कर रहे हैं और रेड लाइट चल रहा है और कोई गीत बज रहा है और या कोई म्यूजिक। मेडिटेशन इज वन होमोजिनस फिनोमिनन। हमारा चलना मेडिटेशन, हमारा उठना मेडिटेशन, हमारा खाना मेडिटेशन, हमारा पीना मेडिटेशन, एवरी एक्ट इज मेडिटेशन। हाउ डू यू ट्रीट पीपल शाउड्रे, दैट इज कुंग फू। सुबह की साकार मुरली, एक दो को याद दिलाओ शिव बाबा की, और जो याद दिलाए उसको क्या करो, क्या करो, थैंक यू। अपने बाजू वालों का हाथ मिलाएंगे और उसको थैंक यू कहेंगे कि आपने मुझे शिव बाबा की याद दिला दी। सभी करो थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। एवरीवेयर देयर शुड बी अ वेव ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। हम लोग एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं। थैंकफुलनेस टू एवरीथिंग। इस हॉल को थैंक यू, इस बगीचे को थैंक यू, इस प्रकृति को थैंक यू, इस बारिश को थैंक यू, सबको। जर्मनी का एक फिलोसोफर भारत के योगी से मिलने आता है, जूते निकालता है दरवाजे पर, बहुत लंबी इसकी यात्रा करके आया है और उसे मिलना है। जूते जोर से निकालता है, जूते का आवाज होता है और फिर अंदर जाके मिलता है। वो गुरु कहता है जाओ पहले अपने जूते से माफी मांग के लाओ, आओ। वो कहता है व्हाट, जूते से और माफी? गुरु कहता है और दरवाजे से भी माफी मांगना। वो कहता है दरवाजे से माफी क्यों? बोलते क्यों का कोई कारण नहीं है, जब तक माफी नहीं मांगोगे बात नहीं होगी। वो कहता है मैं केवल आपसे मिलने आया हूं जर्मनी से। फर्स्ट गो एंड सीक पार्डन। फिलोसोफर हेगेल लिखता है मुझे जाना पड़ा, मैं गया दरवाजे से माफी मांगी, दरवाजे मैंने तुझे जोर से खोला माफ करना, और जूतों तुमको मैंने जोर से पटका माफ करना, और वो लिखता है कि आई थॉट दिस इज अटर स्टुपिडिटी बट आउट ऑफ दिस शियर नॉनसेंस आई लर्न द चैप्टर ऑफ लाइफ. मुझे समझ में आया जीवन का एक अध्याय कि छोटी छोटी चीजों में कितनी महानता छिपी है. उस दिन जब मैंने अपने जूतों को माफी मांगी और दरवाजे से माफी मांगी, मुझे अपने दिल में ऐसा सुकून मिला, सच सोलेस आई नेवर एवर गॉट बिफोर. तो वो भगवान हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता. तो कभी कभी एक अमृत वेला पूरा योग केवल धन्यवाद योग हो, द योगा ऑफ ग्रेटिट्यूड, द योगा ऑफ थैंकफुलनेस. परमात्मा से फिर से प्रेम. प्रेम तो है ही आत्मा में, आत्मा में कूट कूट के भरा है. आत्मा पूर्ण है उस प्रेम के बिना. इसलिए व्यक्ति को संसार में पैसा मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, अच्छे संबंध होते हैं, समाज में बहुत अच्छा सब कुछ चलता है, फिर भी एक खालीपन भीतर होता है, क्योंकि द डिवाइन लव इज मिसिंग. और हम इस संसार की चुनी हुई आत्माएं हैं. भगवान ने जिन्हें चुना है और जो भगवान से प्यार करती. इस भट्टी का थीम ही है मन मना भाव. तो उससे कैसे प्यार करें और कैसे योग लगाएं, ये एक प्रश्न है. तो आज के इस सत्र में योग कहो, मेडिटेशन कहो या प्रभु प्रेम कहो, इसकी 10 परिभाषाएं हम देखेंगे. ये सारी परिभाषाएं सारी अव्यक्त मुरलियों से ली गई है, बिखरी पड़ी है साकार और अव्यक्त मुरलियों में और अव्यक्त संदेशों में. और ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं जो आप नहीं जानते, वो सारी परिभाषाएं हम जानते हैं. अब उसका गहराई से अनुभव करना है. सबसे पहली परिभाषा, योग अर्थात स्मृति. योग अर्थात स्मृति, यह सबसे पहली परिभाषा है योग की. यह सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है. जब हम भूल जाते हैं तो भटक जाते हैं, जब हम स्मृति में होते हैं तब सब ठीक चलता है. आत्मा का भूलना, विस्मृति ही सबसे बड़ा रोग है. और योग की परिभाषा ही है स्मृति, सिमरन, याद. वो स्मृति आ जाए एक मिनट के लिए, आंखें बंद करेंगे और देखेंगे मेरी आंखों के सामने बाबा का कौन सा चित्र आता है. सभी एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और देखो बाबा का कौन सा चित्र, रूप, स्वरूप मेरे सामने है. जैसे हमने आत्मा के 5 रूपक बताए, वो 5ों शिव बाबा के भी है, उसमें 3 ऐड होंगे. पहला, आत्मा के विषय में हमने देखा आत्मा कैसी है, ज्योति. दूसरा, बिंदु. तीसरा, स्टार. चौथा, डायमंड. 5वां, बीज. परमात्मा भी अपने लिए ये कहता है कि मैं ज्योति हूँ, बिंदु हूँ, स्टार हूँ, बीज हूँ, हीरा हूँ. 6वां, सागर. ये सबसे बड़ी उपमा है या फर्स्ट है जो उसने अपने लिए दी है, सागर के किनारे जाकर खड़े होना और सागर को देखना, कभी चारों ओर अथांग सागर, न ओर न छोर लहरें आ रही है। सी मेडिटेशन, जैसे हम सागर के तट पर खड़े हैं और सोचो ये परमात्मा सागर है। अगला सूर्य, उसने अपनी तुलना किससे की है, मैं सूर्य हूं। और तीसरा पहाड़, स्वीट का पहाड़। ये आठों को आधार बनाया जा सकता है योग का। मैं सूर्य को देख रहा हूं, सूर्य की किरणें मुझ में आ रही है। सुबह अमृत वेला योग, सूर्य सागर, सागर की अलग अलग लहरें, मैं आत्मा सागर में समाती जा रही हूं, ज्ञान पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति। दिस इटसेल्फ कैन टर्न इनटू अ मेडिटेशन। या फिर वो सामने है और उसकी सारी किरणें मुझ में आ रही है, या फिर वो स्वीट का पहाड़ है, उसकी वो स्वीटनेस मुझ में समा रही है, या फिर वो सृष्टि का चैतन्य बीज है। इस बीज को जानने से पूरे वृक्ष को तुम जान सकते हो, उस एक को खुश करने से सारे वृक्ष को खुश कर सकते हो। एक एक पत्ते पत्ते को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। तो योग की सबसे पहली परिभाषा क्या हुई, योग अर्थात स्मृति। दूसरा, योग अर्थात यात्रा। आज सुबह की साकार मुरली, याद की यात्रा, मानस शांति की यात्रा। तो योग क्या है, यात्रा। यात्रा अर्थात आप जा रहे हो, यहां से चालू किया यहां पहुंचना है। दिस इज कॉल्ड जर्नी। शरीर से आत्मा तक, आत्मा से परमधाम तक, परमधाम से परमात्मा तक और वापस रिटर्न। यू कैन टेक इट एनी वे। ये यात्रा है इस संसार से शरीर तक, शरीर से आत्मा तक, आत्मा से परमधाम तक, परमधाम से परमात्मा तक एंड देन रिटर्न। तो योग अर्थात यात्रा, और यात्रा अर्थात आज हम यात्रा पे निकले, फिर यहां पर रुक के तो अगले दिन वहीं से यात्रा आगे बढ़ेगी। अर्थात हमारा योग हर दिन हमें आगे 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 बढ़ाता जाए। दो कदम आगे, चार कदम पीछे, चार कदम आगे, दस कदम पीछे, ऐसा ना हो। हम देखते हैं आत्माएं 10 साल पहले जहां थे आज भी वहीं खड़े हैं। अपने अंदर कोई नवीनता नहीं लाई, कोई चिंतन की नवीनता नहीं है, कोई योग की नवीनता नहीं है। इसलिए धीरे 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 बोर्डम, संगम युग का सबसे बड़ा पाप है बोर्डम। बोर हो जाते, कुछ तो सेंसेशनल चाहिए, अच्छा बाहर का, इसलिए बुद्धि बाहर भटकती है। ये वही 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 से There is no spark, no animation, no vivacity. New learning methods हो, new yoga experiments हो, new techniques. कितनी मुरलियां है जिसमें बाबा ने बार 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 कहा है बाप नवीनता देखना चाहते। हर न्यू ईयर की जो मुरली है उसमें एक ही पॉइंट आती है, नवीनता नवीनता नवीनता। और नवीनता आएगी तब जब एकांत में जाएंगे, और नवीनता आएगी जब प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे, और नवीनता आएगी तब जब मौन का अभ्यास करेंगे इंटरमिटेंट बीच बीच में, नवीनता आएगी तब जब योग का समय बढ़ाएंगे। वही उठ रहे हैं 4:15 बजे, भाग भाग के योग, आधा पौन घंटा योग कर लिया, हो गया। साकार महावाक्य है, संसार के लोग 8 घंटा सोते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। योग के चार्ट को बढ़ाते जाना है और धीरे धीरे अपनी सारी दिनचर्या देखते हुए, भोजन देखते हुए, सेवाएं देखते हुए, धीरे धीरे पीछे जाते 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 योग को 2 से 5 तक ले जाना है। उठेंगे ही 3:30 बजे या 3:15 बजे तो बैठेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में ही तो आधा 1.5 घंटा लगता है। आगे का करेंगे, कितने सारे कार्य करने हैं, कितने बड़े बड़े कार्य करने हैं। अमृत वेला केवल बैठ के योग के लिए नहीं है, अमृत वेला बहुत सारी चीजों के लिए। साकार मुरली, उठो और सुबह सुबह भाषण लिखो, उठो और ज्ञान का चिंतन करो, उठो और बाबा से रूह रिहान करो, उठो और विश्व की आत्माओं को सकाश दो, उठो और सर्विस के लिए सोचो क्या किया जा सकता है। वही 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 शिवरात्रि, वही 12 ज्योतिर्लिंगम, वही जो पिछली बार किया था सेम इस बार, पिछली बार जैसे प्रोग्राम किया था सेम इस बार, सेम। नवीनता आएगी तब जब अमृत वेला योग बढ़ते बढ़ते 3 घंटा हो। इस ज्ञान मार्ग में देखा जाए तो पुरुषार्थ केवल 3 ही है, ओनली 3, A B C, केवल 3, बाकी सब परिणाम। सबसे पहला अमृत वेला, A फॉर अमृत वेला, दूसरा B फॉर ब्रह्मचर्य, बाकी सब बाद में आएगा। साधना ब्रह्मचर्य की है, और तीसरा C, कंट्रोल ऑफ एपिटाइट, भोजन भूख। इन 3 पर ही काम करना है बस, बाकी सब परिणाम है। सेवाएं, सेवाओं का विस्तार, डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भट्टिया, क्लासेस, करना कराना, सब कुछ। काम 3 ही है। धीरे धीरे स्टार्ट विथ अमृत वेला, उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है टाइम। उसके लिए थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। 9 PM या 8 PM डिजिटल कर्फ्यू, इसको या तो बंद करना होगा या ऑफलाइन जाना पड़ेगा या कम करना होगा। नींद आंख बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। जागते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ तो देखते रहते हैं, पुकार हो पुकार सुबह सुबह कि वो पुकार रहा है। अमृत वेले की एक बुक है, हरे या नीले रंग की, यज्ञ की, जिन्होंने पढ़ी है फिर से पढ़ो। अपनी एक इंडिपेंडेंट, यहां से जाने के बाद एक भट्टी चालू करनी है। ये भट्टी सार्वजनिक भट्टी है, इसका रूपांतरण इंडिविजुअल भट्टी में अगर नहीं हुआ तो यहाँ आना और यहाँ रुकना और यहाँ सुनना, इसका प्रभाव केवल 10-12 दिन चलेगा, उसके बाद जैसे थे सब भूल जाएगा। याद क्या रहेगा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बस इतना ही याद रहेगा। याद रहेगा ये कराटे वाला याद रह जाएगा, वो डांस थोड़ा सा बहुत याद रह जाएगा, भोजन याद रह जाएगा, बाकी सब कुछ भी नहीं। हाँ, वो ब्लाइंड फोल्ड वाली एक्टिविटी याद रह जाएगी, 3-4 चीज़ें याद रहेगी, और वो भी धीरे धीरे फेड आउट। मंडे को छोड़कर जब आप घर पहुंचेंगे ट्यूसडे या वेनसडे, वेनसडे से अपनी एक इंडिविजुअल भट्टी चालू करनी है, या फिर ये कुछ दिन छोड़ दो। 15 अगस्त अच्छा दिन है, 15 अगस्त से अपनी एक 21 डेज की भट्टी चालू करनी है। टॉपिक इन 3 में से कोई एक होगा, या तो अमृत वेला, या तो ब्रह्मचर्य, या तो भोजन, 3 में से एक। इन तीनों को साधना अर्थात सब कुछ साथ लेना। उठते ही धीरे धीरे धीरे, फिर अलार्म की भी आवश्यकता नहीं, जैसे ही डेढ़ हो जाएगा, पौने दो होंगे, अपने आप आँख खुलेगी, जैसे कोई पुकार रहा है कि उठो, कोई पुकार रहा है, कोई आवाज आएगी, कम ऑन क्लैप्स माई हैंड एंड कम। हाउंड्स ऑफ हेवन करके कविता है किसी लेखक की, उसमें लेखक कहता है मुझे आवाज आ रही है, कवि कहता है मुझे आवाज आ रही है, उस परमात्मा की आवाज आ रही है, वो मुझसे कह रही है पकड़ो मेरा हाथ और आ जाओ, कम ऑन क्लैप्स माई हैंड एंड कम, कम ऑन क्लैप्स माई हैंड एंड कम। बिस्तर हिल जाए, सुबह सुबह उठो, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम, सुबह उठो और स्मरण करो कि मैं कौन हूं, ये शरीर हूं क्या, ये तो मैं हूं ही नहीं, पता नहीं कब बन गया शरीर आत्मा से। सन्नाटा, आवाज आती रहती है ना सुबह सुबह, इसको कहते हैं इंग्लिश में सिबिलेंस। ऐसा जब सन्नाटा हो और ऐसी आवाजें हो वातावरण में, उठो, बिस्तर का त्याग करो और बैठो, शक्ति आएगी। 3:30 बजे के बाद पब्लिक चालू हो जाती है आना, मेन काम उसके पहले कर लेना है। तो ये साधना एक दिन में नहीं आएगी, धीरे 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 धीरे। हो सकता है जॉब ही बदलना पड़े, हो सकता है स्थान ही बदलना पड़े, हो सकता है रात्रि की चर्या जो है वो बदलना पड़े। अगर आ ही रहे, काम ही कर रहे रात को 10 बजे तक, मीटिंग ही चालू कर रहे रात के 10 बजे, मीटिंग खत्म हो रही है 11 बजे, कब सोएंगे और कब उठेंगे। ट्रैवलिंग ही 4 घंटे का, स्क्रीन टाइम ही 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स, प्रायोरिटाइज। आज की साकार मुरली, टाइम बर्बाद नहीं करना है। टाइम वेस्टर्स और एनर्जी ड्रेनर्स, ये डायरी में लिखेंगे 2 शब्द और इसकी लिस्ट बाद में बनाएंगे। फिर मेरे टाइम वेस्टर्स कौन है और एनर्जी ड्रेनर्स कौन है, एनर्जी कौन किडनैप करके लेके चले जाता है और टाइम कौन वेस्ट कर देता है, पता ही नहीं चलता है टाइम वेस्ट हो गया। 1 घंटा ऐसे ही चला गया, योग करने जा रहे थे, कोई बीच में मिल जाता है, कहता है चलो जरा घूम के आते हैं, गया। इंटरनेशनल योग के लिए जा रहे थे, बीच में कोई मिलता है, कहता है चलो सैंडविच खा लेते, इधर जा रहे थे इधर। इसलिए किन लोगों के संग में रहते हम, वो भी महत्वपूर्ण है। हाउ मच सीरियस दे आर अबाउट दिस लाइफ। तो योग अर्थात स्मृति पहला, दूसरा योग अर्थात यात्रा। यात्रा कल जहां छोड़ी थी आज उसके आगे निकलना है, मूव अहेड। तीसरा योग अर्थात मिलन, योग अर्थात मिलन। जब भी बाबा से मिलन करना हो तो योग कर लेना, भगवान से मुलाकात, भगवान से मिलन। डायमंड हॉल के सीन को बार बार इमर्ज करना, देखना, या जहां भी आप बाबा से मिले हैं। इमर्ज एंड सी, इमर्ज एंड सी। योग की परिभाषा है मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, वो हो जाए। अगला योग अर्थात संबंध, द 4th डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, योग इज संबंध। अलग अलग संबंधों से, हम लोगों ने एक बार 108 संबंधों की लिस्ट निकाली थी बाबा से, अलग अलग संबंध उसमें है, कोई नर्स का संबंध, स्पिरिचुअल काउंसलर का संबंध, फिजिशियन का संबंध, ट्यूटर का, काउंसलर का, एजुकेटर का, अलग 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 जो रूटीन संबंध है उनसे भी थोड़ा हटके। योगा शुड बिकम इंटरेस्टिंग। जब हम नया नया उसमें कुछ करेंगे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग संबंध, कभी वो ड्राइवर है तो कभी वो पायलट है, कभी वो भाई है तो कभी वो बहन भी है, अलग 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 संबंध। अगला फिफ्थ, योग अर्थात लगन में मगन। योग की पांचवी परिभाषा क्या है? लगन में मगन हो जाना। तो ये पांच मुख्य परिभाषाएं हैं। खो जाना यादों में। सिक्स्थ, आत्माभिमानी स्थिति और परमात्माभिमानी स्थिति। योग की छठवीं परिभाषा, सोल कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस। आज सुबह कितनी अच्छी लाइन थी, सोल कॉन्शियसनेस ही क्या है? सच्ची सच्ची डैश स्थिति, अंतर्मुखी अवस्था या अंतर्मुखता। इसलिए प्रैक्टिस तो एक ही है, मैं आत्मा हूं, उस पर काम करते रहना। आज का लक्ष्य है 2000, और जिनको कल वो नहीं मिला था टेलीकाउंटर, उनका टारगेट है 4000। कल का पेंडिंग काम भी तो करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जिनको वो मिला नहीं अभी तक? अभी भी कुछ है, शाम को आएगा। तो काम जारी रखना है, कीप वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग। किसी बॉक्सर को पूछता है तुम क्या करते हो, वो कहता है प्रैक्टिसिंग। वो कहता है तब क्या करते हो जब तुम्हारा दुश्मन सोता है, वो कहता है प्रैक्टिसिंग। मैच से पहले क्या करते हो? प्रैक्टिसिंग। अच्छा ठीक है, तुमने मैच खेली, तुम जीत गए, जीतने के बाद क्या करते हो? प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग चालू है, बीच में मैच और जीतना हारना वो उससे कोई लेना देना नहीं है। मुख्य काम है प्रैक्टिसिंग, 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहना है। सभी ऐसा करेंगे? आई प्रैक्टिस, 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 आई घूमना है। आई प्रैक्टिस, 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 घूमना है ऐसे। आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस, आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग। ये बच्चों को सिखाई जाती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो योग अर्थात आत्माभिमानी स्थिति और परमात्माभिमानी स्थिति। अगला, योग अर्थात एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, पूर्ण एक रस अवस्था। परमधाम का ही योग बढ़ाते बढ़ाते एक घंटा तक ले जाना है धीरे धीरे। उसमें अलग अलग मेथड्स इन्वेंट करने, परमधाम के अलग अलग नाम याद करो, उसमें स्थित हो जाओ। मैं शांति धाम में हूँ, थोड़े देर शांति का। मैं मुक्ति धाम में हूँ, मुक्त हूँ, मेरा कोई बंधन नहीं है। मैं निर्वाण धाम में हूँ, चुप। मैं ब्रह्म में हूँ, ब्रह्म लोक में हूँ, ब्रह्मांड में हूँ, मैं शिवालय में हूं। एक मंदिर है जिसमें मैंने प्रवेश किया है, समय बढ़ाना है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अलग अलग नाम, मूल वतन में हूँ, फर्स्ट फ्लोर में हूँ, अपने घर में हूँ, होम स्वीट होम, स्पिरिचुअल नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। छोटा बच्चा रोता है ना ऐसे ऐसे करके, वैसे रोना है थोड़ा बीच में कि मुझे घर जाना है, मुझे घर पुकार रहा है, मुझे घर जाना है। क्रिएट अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉस्टैल्जिया, होम सिकनेस, सेंटिमेंटलिज्म इसको कहते हैं साइकोलॉजी में, होम सिकनेस। तो योग अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के अभ्यास करने हैं, बैठ के एक मिनट तक एक ही संकल्प, उसको रिपीट करते रहना है, जस्ट वन थॉट। तो अपने हाथ से वो निकालेंगे, आपका मार्बल कंचा स्टोन, अपने डायरी पेन पेंसिल को बाजू में रख देंगे, और जिनके पास अगर नहीं है तो वो टेली काउंटर को ही ले लो हाथ में, या तो कुछ भी एक हार्ड वस्तु को ले लो। सोचना है ये शिव बाबा है और शिव बाबा मेरे साथ है। रेड लाइट करेंगे, शिव बाबा मेरे साथ है, और सब खड़े हो जाएंगे। एक पल भी उसकी याद न जाए, सोचो मेरे साथ शिव बाबा है। एक भी दूसरा विचार ना आए, मेरे साथ शिव बाबा है। इस एक थॉट को अपने अंदर समा लेना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अब धीरे धीरे अपने स्थान से मूव करना है, उस वाले दरवाजे से इस वाले दरवाजे से या कोई भी दरवाजे से 5 मिनट तक बाहर घूमकर वापस इसी हॉल में आ जाना है। कौन सा विचार हो, 1 मिनट भी ये विचार निकले ना कि मेरे साथ शिव बाबा है, एक मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, स्टार्ट मूविंग। मूव करके विद इन 5 मिनट्स कम बैक, कहीं पर भी आसपास घूमकर वापस जाना है, हाथ में वो विचार, वो स्टोन, वो मार्बल रहे, मेरे साथ शिव बाबा है। मूव आउट एंड कम बैक स्लोली, अव्यक्त स्थिति, मौन, अशरीरी अवस्था। बाबा मेरे साथ है, एक पल भी उसकी याद न जाए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हॉल से बाहर जाकर वापस आ जाना है। अपनी सीट पर नहीं बैठेंगे, यहां पर भी घूम सकते हैं। एक ही विचार, बस सभी धीरे धीरे हॉल में आएंगे। व्हाइट लाइट स्टेज पे, वहां से आएंगे उधर, इस ओर से स्टेज पर आएंगे और यहाँ अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि लेकर वापस जाएंगे अपने स्थान पर। वहां से आना है और इधर से वापस जाना है। सोचो हम डायमंड हॉल में हैं, डायमंड हॉल की स्टेज पर चढ़ रहे हैं। सारी सभा में ब्राह्मणों का समुदाय बाबा से दृष्टि लेते लेते, बाबा मुझे देख रहा है, ये भट्टी में अव्यक्त बाप दादा का मिलन हो रहा है। 2 सेकंड 3 सेकंड दृष्टि लेके आगे बढ़ जाना है अव्यक्त स्थिति में। अशरीरी अवस्था, मौन, फरिश्ता स्वरूप। सोचो मैं बाप दादा के सम्मुख हूं, एक साथ 3-4 लोग दृष्टि लेंगे, बाबा से शक्तिशाली दृष्टि। हम डायमंड हॉल में हैं, डायमंड हॉल की स्टेज पर है। 2-3 सेकंड दृष्टि लेकर अपने स्थान पर मौन में पहुंच जाएंगे। एक साथ 3-4-5-6 लोग दृष्टि लेंगे, अव्यक्त स्थिति, अशरीरी अवस्था, बाबा मेरे साथ है, परमात्मा प्रेम की वर्षा हो रही है, परमात्मा दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। दृष्टि लेकर अपने स्थान पर निकल जाएंगे। बाबा की दृष्टि मेरे संकल्पों पर पड़ रही है, बाबा की दृष्टि मेरे पूर्ण जीवन पर पड़ रही है। बाबा की आंखें गहरी गहरी आंखें, बाबा की वो रूहानी दृष्टि, परमात्मा प्रेम की वर्षा, बाबा आंखों से बातें कर रहा है, उसके नैनों से प्रेम झलक रहा है। उसके चेहरे से रूहानियत की वर्षा हो रही है। मेरे जीवन में जो समस्या है, मुश्किल है, आज उसका अंत हो गया। स्वयं बाबा मिलन में बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, बाबा मुझे टोली दे रहा है दृष्टि दे रहा है, वरदान दे रहा है। परमात्मा मिलन, जन जन की प्यास पूरी हो रही है। मौन वार्तालाप, साइलेंस, बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। बाबा मुझे तिलक दे रहे विजयी भव, सफलता मूर्त भव। जो सभा में है वो प्रभु की याद में खो जाएंगे। निर्विघ्न भव, स्टेज पर आते ही मेरे शरीर में एक अजीब सा कंपन, एक रोमांच, एक खुशी, एक अद्वितीय आनंद। जन जन से जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। एक साथ सात आठ लोग मिलके दृष्टि लेंगे और अनुभव करेंगे, बाबा मुझे देख रहा। उसकी दो तीन सेकंड की दृष्टि ही जन्म भर के, जन्म जन्म के अज्ञान को मिटा सकती है। एक साथ कई लोग आएंगे और बाबा से दृष्टि लेकर आगे बढ़ेंगे। अनुभव करो, ये बाबा मिलन का दिन है। अव्यक्त स्थिति में चलना है, आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी अवस्था, फरिश्ताचार। जो लोग खड़े हैं वो योगयुक्त अवस्था में खड़े रहेंगे। मन में कोई संकल्प लेकर जो बाबा की दृष्टि से ही पूर्ण होगा, बस कुछ सेकंड की दृष्टि लेकर आगे बढ़ जाना है। मैं परमात्मा याद में खोई हुई आत्मा हूं। याद अर्थात स्मृति, याद अर्थात मिलन, याद अर्थात संबंध, लगन में मगन, आत्माभिमानी स्थिति, एकाग्रता। सोचेंगे डायमंड हॉल की ये स्टेज है, आगे बढ़ते जाना है। बाबा आए हैं, पूरे हॉल में अव्यक्त वायुमंडल है। प्रभु प्रेम, परमात्मा स्नेह की वर्षा मेरे हर कदम में पदम, सिर पर छत्र छाया, हाथों में परमात्मा हाथ। जिनका हो गया अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और दूर से परमात्मा मिलन का नजारा देखेंगे। आत्माएं परमात्मा से मिल रही है। एक साथ कई आत्माएं आएंगे ताकि सबका बाबा से मिलन हो, सबको चांस मिले। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। एक एक शब्दों में अपने आप को स्थित करते जाएंगे, मेरा सर्वस्व प्रभु अर्पण है। मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा हूं। परमात्मा की एक सेकंड की दृष्टि जन जन के ताप भर लेती है। चलते फिरते उठते बैठते योग की अनुभूति, याद की अनुभूति, दृष्टि लेकर आगे बढ़ जाना है, कंटिन्यूअस चलते रहना है। उसकी एक सेकंड की दृष्टि पर्याप्त है। आगे आगे आगे, हर कदम में पदम का अनुभव, एवरी स्टेप प्रभु याद में। जो बैठे हैं वो प्रभु मिलन का अनुभव करेंगे। हाथ का मार्बल हाथ में ही रखना है, उसको फील करो, उसको टच करो, वो मेरे साथ है। मैं जहां भी रहूं, जहां भी जाऊं, उसकी यादों में हूं। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, उसका हूं और उसे पता हूं। जन जन की प्यास पूरी हो रही है, उसकी एक दृष्टि ही सारा अंधकार दूर कर सकती है। प्रेम का सागर, निर्मलता का सागर, जो बैठ गए हैं वो अपनी डायरी खोलेंगे और लिखेंगे, बाबा मुझे अपनी गोदी में रख लो। जो बैठ गए हैं अपनी डायरी खोलेंगे और लिखेंगे, बाबा मुझे अपने गोदी में रख लो।